नमस्कार, मैं प्रतिभा बी बुंदेल, पीजीटी हिंदी अध्यापिका, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय दो कल्पकम से आपके समक्ष हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा दसवीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वाच्य विषय का अध्ययन करवाने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। वाच्य अर्थात वॉइस, इसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैंने पत्र लिखा। दूसरा वाक्य, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। और तीसरा वाक्य, मुझसे चला नहीं जाता। ये तीनों वाक्य अलग अलग प्रकार के वाच्य हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो अब हम वाच्य के भेदों के बारे में जानेंगे। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर है, वाच्य के दो भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। पहले देखते हैं कि कर्तृवाच्य होता क्या है, तो इसकी परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से ना होकर कर्ता से होता है, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। यहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है, वह जिस भी लिंग, वचन और पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी लिंग, वचन और पुरुष की लगाई जाती है। उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, राम सोता है। इसमें जो कर्ता है वह है राम, और जो क्रिया है वह है सोना या सोता है। यहाँ क्योंकि राम जो की कर्ता है एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की ही लगाई गई है। राम पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग की ही लगाई गई है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, हमारा दूसरा वाक्य है, बच्चा खेलता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्ता बच्चा है और एक वचन पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी वैसी ही लगाई जाएगी। मान लीजिए कि यदि हमने बच्चा के स्थान पर बच्ची लिख दिया, तो बच्ची क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारे वाक्य की क्रिया स्त्रीलिंग रहेगी और हमारा वाक्य बन जाएगा कि बच्ची खेलती है। अब अगर हम बच्चा की जगह बच्चे, जो कि बहुवचन है, लिख दें, तो हमारा वाक्य बन जाएगा, बच्चे खेलते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि कर्तृवाच्य की परिभाषा के अनुसार, क्योंकि इसकी क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है, तो यह वाक्य कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वाच्य का दूसरा प्रकार क्या होता है। तो वाच्य का दूसरा प्रकार होता है अकर्तृवाच्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो हमारा पहला प्रकार है कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है तो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। यहाँ कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कर्तृवाच्य में हमने क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर किया था, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग हम कर्म के आधार पर ही करेंगे। इस प्रकार वह कर्मवाच्य बन जाएगा। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर कर्म और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है। यहाँ पर जो लड़का है वह कर्ता है, पत्र कर्म है और लिखा जाता है यह क्रिया है। तो ये जो लिखा जाता है क्रिया है, ये हमने लड़के यानी कि कर्ता के अनुसार नहीं लगाई, बल्कि पत्र यानी कि कर्म के अनुसार लगाई है। इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य वाक्य कहलाएगा। हमारा दूसरा उदाहरण है, सुंदर से मधुर गीत गाए गए। इस वाक्य में भी सुंदर कर्ता है, मधुर गीत कर्म है और गाए गए क्रिया है। अतः ये दोनों ही प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कर्मवाच्य को हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। अकर्तृवाच्य का दूसरा प्रकार होता है भाववाच्य। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जब क्रिया का विषय कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है तो वह वाच्य भाववाच्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग आकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव होता है। भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं शब्द के साथ किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, रवि से चला नहीं जाता। यहाँ चला नहीं जाना एक प्रकार का भाव है कि रवि चलते चलते थक गया है और अब जैसे कह रहा हो कि भाई अब मुझ में और चलने की शक्ति नहीं है, मैं अब और नहीं चल सकता। इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है और यह वाक्य चलने की असमर्थता को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे यह भाववाच्य वाक्य हो गया। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इसमें भी सहने की क्रिया नहीं की जा सकती, ऐसा ही भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यह भी भाववाच्य कहलाएगा। यहाँ क्रिया का सीधा सीधा संबंध भाव के साथ दिखाया जा रहा है। ये दोनों ही प्रकार के वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। भाववाच्य को अंग्रेजी में हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो अभी तक हमने तीन वाच्यों के बारे में जाना, जो हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए अब देख लेते हैं कि वाच्य परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखेंगे। इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला नियम, पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलें। दूसरा, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलें। तीसरा, कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा का प्रयोग करें। चौथा, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे भी हटा दें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहला वाक्य है मैंने पत्र लिखा, यह कर्तृवाच्य है। अब जब हम इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार बन जाएगा, मुझसे पत्र लिखा गया। दूसरा, करीम पतंग उड़ा रहा है, यह कर्तृवाच्य है। इसका जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो वाक्य बन जाएगा करीम द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, सुंदर ने गीत गाए, यह कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य हो जाएगा सुंदर से गीत गाए गए। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो इसके जो नियम हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है कर्ता के आगे से अथवा द्वारा लगाएं। उदाहरण के लिए बच्चे, उसके आगे हमने लगा दिया से, तो बन गया बच्चे से। दूसरा है लड़की, इसके आगे हमने लगा दिया द्वारा, तो बन गया लड़की द्वारा। यह पहला नियम हुआ। दूसरा है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। उदाहरण के लिए पढ़ेंगे, इसका हो जाएगा पढ़ा जाएगा। खेल रही थी, बदल जाएगा खेला जा रहा था में। इसी प्रकार सोते हैं हो जाएगा सोया जाता है। तो आइए अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं। पहला वाक्य, हम इतनी दूर नहीं रह सकते, यह कर्तृवाच्य है। जब हम इसका भाववाच्य बनाएंगे तो यह हो जाएगा हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता। दूसरा वाक्य, सौम्या सुबह को नहीं उठ सकी, यह कर्तृवाच्य है। तो भाववाच्य बनेगा सौम्या से सुबह नहीं उठा जा सका। तीसरा वाक्य, पक्षी रात को सोते हैं, यह कर्तृवाच्य है। तो भाववाच्य बनेगा पक्षियों से रात को सोया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि वाच्य क्या होता है, इसके भेद कितने और कौन कौन से होते हैं, तथा वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।